તારીખ 13/3/1995 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 124, 125 અને 129 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 257
નામ્રત 124 પેજ 101 હિન્દી મેં 101 પેજ નંબર આખિર કિતના ભી સુન લો લેકિન સુખ તો યહાં સે હી શુરૂ હોતા હૈ ક્યા હુઆ કે તત્વજ્ઞાન કા જો અભ્યાસ ચલતા હૈ ઉસમેં પ્રવચન સુનને કા યોગ બનતા હૈ और सत्संग में बहुभाग लोगों को सुनने का रहता है। बोलने वाला तो कोई एक ही एक दो ही होते हैं, करीब करीब सबको सुनने का प्रसंग बनता है। और ऐसा सुनना भी एक रूटीन हो जाता है। जैसे दूसरे क्रियाकांड का रूटीन हो जाता हो, पूजा का, भक्ति का, वैसे सुनना सुनने का भी रूटीन हो जाता है। और बहुत कुछ सुनने पर भी जीव आगे नहीं बढ़ता है, ऐसे जीव के लिए ये बात चली है। क्योंकि ये सब चर्चाएं बहुभाग सोनगढ़ में चली है, या सोनगढ़ में जो मुमुक्षु लोग हैं उन लोगों के साथ ही चली है। सुनने का तो वर्षों तक, कई सालों तक लोगों ने सुना, गुरुदेव के प्रवचन सुने, दूसरे विद्वानों के प्रवचन सुनते थे। ऐसा सुनना तो बहुत होता था, लेकिन फिर देखा कि ये भी एक रूटीन हो गया और सुनने वाले वहाँ के वहाँ हैं। और यही कारण से वहाँ के वहाँ हैं कि जो नाश्ते में खड़े हैं वहाँ तो कोई फिर फर्क या नहीं। नाश्ते में खड़े हैं मतलब कि जो प्रतिबंध में खड़े हैं, समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, शरीर प्रतिबंध, उसमें कोई फर्क नहीं किया। और तत्व का विषय बहुत सुनने का मिला, सूक्ष्म सूक्ष्म विषय भी सुनने का मिले। और शुद्धात्मा जो श्रद्धा का विषय है, ज्ञान का, शुद्धोपयोग का विषय है, ऐसे श्रद्धा की, शुद्धोपयोग की, सूक्ष्म अध्यात्म की बातें भी सुनने को मिले। लेकिन प्रतिबंध में से तो निकले नहीं, तो सुन सुन करके भी एक रूटीन में आ जाएगा। सत्संग भी एक रूटीन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति बनती है और बनी है, ऐसी परिस्थिति में ये चर्चा चली है। चर्चा का बैकग्राउंड वो ये है। सत्संग, मानो के सत्संग तो नियमित रूप से कोई करता है, और प्रतिबंध भी हटाता नहीं है, तो सत्संग क्या फायदा करेगा? सत्संग विफल जाएगा, निष्फल जाएगा। सत्संग तो प्रतिबंध को मिटाने के लिए, हटाने के लिए था। वो शस्त्र भी फेल गया, अब क्या, अब तो कोई प्रतिबंध मिटाने का साधन भी नहीं रहा। कैसे, उम्र से क्या लेना देना? कैसे स्वतंत्र हो जाते हैं? नहीं, लगाव तो अपना अपना अपने परिणाम में होता है। संयोग कुछ भी हो, चालीस पचास साल क्या बुढ़ापा होता है तो क्या उसको लगाव नहीं होता है? लड़के के साथ लगाव आ जाता है, बूढ़े को तो और ज्यादा हो जाता है। प्रतिबंध तो अपना अपना है, अपने भाव में है, कहीं भी रहे, जिसको प्रतिबंध है उसको प्रतिबंध है, वो कुछ भी कर ले, प्रतिबंध में से निकले बिना कुछ भी कर ले, सब के सब साधन संसारार्थ होएगा, पुण्यबंध का कारण होकर के संसारार्थ हो जाएगा सब के सब साधन। ऐसे लोगों की बात है कि आखिर कितना भी सुन लो लेकिन सुख तो यहां से ही शुरू होता है, यहां से मेरे आत्मा में से सुख तो शुरू होता है। सुनते ही प्रयास चालू होए यह पात्रता का लक्षण है। तो ये जो आत्मस्वरूप की चर्चाएं चलती हैं, अध्यात्म तत्व की चर्चाएं चलती हैं, तो उसमें तो पात्रतावान को तो सुनते ही प्रयास चालू हो जाना चाहिए। सुन करके सुनने का संतोष मान ले कि चलो बात तो सुनने को मिली, ये तो बराबर नहीं है। दूसरे लोग ऐसे भी कहेंगे कि आपको तो तत्व की बात सुनते हुए बहुत प्रमोद आता है और आना भी चाहिए, लेकिन प्रमोद करके बैठे रहना थोड़ा है, प्रयास चालू हो जाना चाहिए, पुरुषार्थ चालू होना चाहिए। हाँ फिर तो यही हो जाएगा, फिर तो वो प्रमोद भी बंद हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि फिर वो की वो बात सामने आएगी, तो फिर तो रस कम हो जाएगा कि ये तो बात अपने को मालूम है, बात ये हो जाएगी। शुरू शुरू में प्रमोद आएगा, बाद में तो पुराना मुमुक्षु को तो प्रमोद आने का बंद हो जाता है, फिर तो क्या है कि एक रूटीन बन गया है तो एक क्रिया दूसरा दूसरी क्रिया करता है तो वो ही क्रिया में लग जाता है बस। वांछन भी एक बाह्य क्रिया है, सत्संग भी बाह्य क्रिया हो जाएगी, ऐसा बन सकता है। उन लोगों के लिए ये बात कही है। प्रतिबंध के बारे में ये है कि हम हमारे आत्मकल्याण के पुरुषार्थ को गौण करके बाहर के समाज के शरीर के कुटुंब के साथ जो उदय है हमारा, उनकी मुख्यता कर लेते हैं, वही हमारा प्रतिबंध है, वही प्रतिबंध है। चाहे वो समाज ज्ञाति के वाला हो, ज्ञाति के हिसाब से हो कि भाई हम फलानी जाति में जन्म हुए हैं तो हमारा ये समाज है, चाहे वो समाज मुमुक्षु धार्मिक समाज हो, समाज का जो प्रतिबंध है उसमें समाज की मुख्यता रहेगी कि समाज में कोई गड़बड़ नहीं हो ऐसा काम करो, आत्मकल्याण हो कि नहीं हुए उसके लेना देना नहीं है। समाज वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बराबर नहीं है। तो ये तो एक कोई खास विषय है, ये कोई आम जनता का समाज का विषय नहीं है, ये तो एक खास विषय है, उसमें समाज की अक्कल काम में नहीं आएगी। जैसे एक हार्ट प्रॉब्लम होता है तो एक खास विषय है कार्डियोलॉजिस्ट का, उसमें समाज का समाज की अक्कल काम में आएगी? हार्ट का डिजीज को ठीक करना है, हार्ट का हृदय रोग को ठीक करना है तो उसमें समाज की सलाह काम में आती है कि नहीं आती है? तो आत्मा के शुद्धिकरण में विषय में समाज की सलाह काम में आएगी क्या? इस विषय में समाज की अक्कल कितने, कोई किसकी चांच भी उसमें बुढ़ती नहीं है। चांच बुढ़ती है मतलब मालूम है, तो ये जो है ना बगले बगले इसमें बहुत लंबी लंबी चांच इसकी होती है, तो उसको थाली में दूध दे दो कि तुम दूध पियो। तो थाली में दूध कितना है, 1-2 मिलीलीटर का। उसका बोला उसकी चाँद भी डूबेगी नहीं, तो दूध पिएगा कैसे? उसको तो जीभ होती नहीं, बिल्ली हो तो ऐसे ही पी जाए। ऐसे समाज के तो चाँद बूटती नहीं, ये तो सब एक स्पेशल लाइन है जो अलग से। आत्मा को अनादि से जो अशुद्धि है और जमी हुई अशुद्धि है, कैसी है? जम गई है, जैसे जंग जम जाता है ना, ऐसे जमी हुई अशुद्धि है। जंग जम जाता है तो कई प्रकार के रसायन लगाने पड़ते हैं, केमिकल्स लगाने पड़ते हैं, तब निकलता है। ऐसे यहाँ भी अनुभव रसायन, सत्संग रसायन, अनेक प्रकार के रसायन से काम होता है। उसमें समाज वाले राजी रहे ऐसा करो, या घर वाले राजी रहे तो काम करो। समाज वाले नाराज हो जाए, घर वाले नाराज हो जाए, या हमारे शरीर की अनुकूलता नहीं होवे तो हम नहीं ये कर सकें। शरीर की अनुकूलता रहे उतना ही करो, शरीर को प्रतिकूल हो जाए ऐसा मत करो। या अपने आदत के अनुकूल सब करो। हमको इतने टाइम पे सोना ही है, उतने टाइम पे हमको उठना ही है, ये तो हमारा खाने का टाइम है, ये तो हमारा आराम का टाइम है, ये तो फलाना है, ये तो हमारा बिजनेस का टाइम है, वो टाइम है। बाद में जो जगह रहे उतना करो, जितना अवकाश मिले उतना करो, बाकी अपना जो है बराबर है। जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ उतने ही फंसे रहो, ये कभी काम होने वाला नहीं है। सुनते ही प्रयास चालू हुए, यह पात्रता का लक्षण है। यह थोड़ा सुन तो लूं, इसमें क्या नुकसान है? पीछे अंदर मैं जाऊंगा, पहले सुन लो और सुन लो और थोड़ा सुन लो, पुरुषार्थ तो बाद में करेंगे। इस प्रकार के परिणाम में स्वभाव की अरुचि है, उनको मालूम नहीं है। वो सुनता है, उनको ये लगता है कि मेरे को तो तत्व की रुचि है इसलिए मैं सुनता हूँ। लेकिन सुन सुन करके जो प्रयास नहीं करता है उसको स्वभाव की अरुचि है। क्यों स्वभाव में नहीं जाता है? जब स्वभाव की बात सुनता है तो स्वभाव में क्यों नहीं लगता है? स्वभाव की ओर अपना पुरुषार्थ क्यों उसको चालू नहीं होता है? ये बताता है कि वो सुनने का बहाना लेकर के पुरुषार्थ को धक्का लगाता है कि अभी नहीं, अभी नहीं, जिसको अभी नहीं उसको कभी नहीं, ये बात हो जाएगी। अगर नियत सही हो तो कोई डेट फिक्स कर लें। हम हमारे किसी के पास पैसे बाकी हो, हम लेने को जाएंगे, वो व्हाट टाइम हो गया, हमारा पैसा वापस करो। अब माल ले गई हो, पैसे नहीं दिए, दूंगा ना, कब दूंगा? अरे दूंगा आपको, ना थोड़ी देता हूँ, जवाब मीठा देगा। लेकिन जो समझदार है वो समझ जाएगा कि उसको देने का नियत नहीं है। अच्छा देना है तो तुम टाइम फिक्स करो, तो उस टाइम पर आप ले जाना, ब्याज के साथ ले जाना। टाइम ही नहीं देगा वो, दूंगा ना जब मेरा अनुकूलता हो जाएगी, दे दूंगा, मेरी थोड़ी अनुकूलता होने दो, दे दूंगा कभी भी दे दूंगा, कोई टाइम, वो टाइम नहीं देगा। तो अगला समझ जाएगा कि उसका नियत नहीं है। वैसे जो सुनते ही कार्य चालू नहीं करता है और सुनते ही पुरुषार्थ चालू करने का कोई निर्धारण नहीं है कि कब से करना है, उनको वास्तव में स्वभाव की अरुचि है। वास्तव में उनको स्वभाव की रुचि नहीं है, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य होता है। रुचि होता है तो पुरुषार्थ चालू हो जाता है। फिर क्या फर्क रहा? कोई नहीं सुनता है और पुरुषार्थ नहीं करता है, और कोई सुनता है वो पुरुषार्थ नहीं करता है, दोनों में क्या अंतर रहा? दोनों एक एक ही जगह खड़ा है, और क्यों नहीं करता है कि उनको वो प्रतिबंध में खड़ा है। चार प्रतिबंध कहा है ना कृपाल जी ने 172 पत्र में, कि चार प्रतिबंध है, समाज प्रतिबंध है, कुटुंब प्रतिबंध है, शरीर प्रतिबंध और संकल्प विकल्प प्रतिबंध है। वहां का वहां रहा तो सुना अनसुना दोनों बात एक है। इस प्रकार के परिणाम में स्वभाव की अरुचि है, यह बात ठीक नहीं है। बाद में पीछे अंदर में जाऊंगा, यह बात ठीक नहीं है। वो तो स्वभाव की अरुचि है, उनको पता नहीं है कि मुझे स्वभाव की अरुचि है, इसलिए वो चर्चा निकाली। ये ठीक नहीं है, ये अच्छा लक्षण नहीं है। बाद में करूंगा ये अच्छा लक्षण नहीं है। किसी को मुनाफा बाद में नहीं लेना है। आज नफा घर में आता हो, मुनाफा आता है, तो कोई कल नहीं बोलेगा। वहां तो कहवत लगाते कि लक्ष्मी चांदला करने को आई है, इसको पीछे मत, मुंह धोने को मत जाओ, बिगड़ा हुआ हो तो भी तुम तो लगा दो, तिलक कर दो, चांदला मैंने तिलक। लक्ष्मी तिलक करने को आई है तो कोई मुंह धोने को नहीं जाएगा। यहाँ तो कुछ पीछे करूंगा, बाद में करूंगा, पहले सुन लू, पहले वो कर लू, पहले पढ़ लू। उनको स्वभाव की रुचि नहीं है, उनको अभी अभी कोई मुनाफा नहीं चाहिए, अभी लाभ नहीं चाहिए। अब भले ही नुकसान थोड़ा चालू रहे, अभी तो लाभ नहीं करना है। बात समझदारी की नहीं है। और एक समय की ज्ञान पर्याय में विचार कर करके भी क्या मिलेगा। देखो, जो आत्मा का विचार नहीं आत्मकल्याण का करता है, उनको कहेंगे कि तुम आत्मकल्याण का कुछ विचार करो, संसार की उपाधि में सारा जीवन चला जाएगा तो भी अंतिम श्वास तक भी तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी, तो कुछ विचार करो। लेकिन जो विचार में अटका हुआ है, उसको कहेंगे कि तुमको विचार करके के क्या मिलेगा, पुरुषार्थ चालू करो ना, पुरुषार्थ चालू होना चाहिए। और एक समय की ज्ञान पर्याय में विचार कर करके भी क्या मिलेगा, त्रिकाली की ओर जोर देने से ही क्षणिक पर्याय की एकता छूटकर सुख मिलेगा। त्रिकाली परमात्मा स्वरूप है, उसकी महत्ता और उसके प्रति वजन जाएगा तो क्षणिक पर्याय में जो एकत्व हो रहा है वो एकत्व छूट जाएगा और सुख मिलेगा। एकत्व छूटेगा तो सुख मिलेगा, वो तो बीच में दूसरा प्रोसेस ही नहीं लेते हैं। बात में बहुत तेजी से काम किया ना, ये एकत्व छोड़ो, बस एकत्व छोड़ना है, पर्याय में एकत्व नहीं होना, कोई बहाने नहीं होना चाहिए, कोई बात लेते हैं हर जगह। और 125वां वचनामृत है इसके बाद का। एक प्रश्न उठाया है किसी ने, वर्तमान ज्ञान विदन ख्याल में आता है, मैंने ज्ञान का परिणमन होता है वो ख्याल में तो आता है, विदन मैंने वो सामान्य की बात नहीं है, वहां विदन मैंने ज्ञान का अनुभव, ज्ञान हो रहा है, हम जानते हैं तो ज्ञान हो रहा है, वो अनुभव में ख्याल में आता है। वैसे त्रिकाली सत ख्याल में क्यों नहीं आता है, ज्ञान की पर्याय ख्याल में आती है, उस तरह से त्रिकाली सत जो अपना मूल परमात्मा स्वरूप है वो क्यों ज्ञान में नहीं आता है। उघाड़ में मैंने समझ में तो युक्ति आदि से आता है, जो शास्त्र का तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है उनको तो आगम युक्ति दृष्टांत अनुमान तर्क से न्याय से ये सब पहलू से परमात्मा स्वरूप कैसा है वो ख्याल में आता है, आ सकता है, लेकिन अंदर से ख्याल में क्यों नहीं आता है? अंदर से मैंने अनुभव से ख्याल में क्यों नहीं आता है? समझ में आता है, अनुभव में क्यों नहीं आता है? प्रश्न वो है। और जैसे ज्ञान से जानते हैं वो ख्याल में आता है, तो ज्ञान स्वभाव क्यों अनुभव में नहीं आता? और समझ में हम सब तरह की समझ करते हैं, तत्व का अभ्यास करते हैं, तो आगम से, तर्क से, न्याय से, अनुमान से, दृष्टांत से, युक्ति मैंने दृष्टांत, इसका उत्तर कि जो उघाड़ में न्याय से ख्याल में आया, क्या उत्तर दिया? कि जो उघाड़ से न्याय की न्याय से ख्याल में आया, तो वो ख्याल वाली ज्ञान पर्याय भी तो कोई आधार पर खड़ी है। तो वह आधार वाली वस्तु क्या है? ऐसे देखकर उस आधार वाली शक्ति में ही थंभ जाना, प्रसर जाना, वही सत स्वभाव है। ये जो 125 नंबर का वचनामृत है उसमें विधि की बात किया है। विधि की बात वो बहुत कम करते थे, लेकिन 5-7 जगह बहुत अच्छी बढ़िया बात किया है। वही वहां से प्रदर्शित होते हैं कि वो विधि के जानकार थे। अकेली त्रिकाली की बातें नहीं करते थे, विधि के भी जानकार थे। यहां से निकलता है। क्या कहा? कि जो उघाड़ में न्याय से ख्याल में आया, तो उघाड़ तो ज्ञान की पर्याय है, वो ख्याल वाली ज्ञान पर्याय भी तो कोई आधार पर खड़ी है। कोई भी अवस्था वस्तु के बिना तो होती नहीं। आप बिना वस्तु अवस्था को देखते हैं, ये कैसी काल्पनिक विचित्रता है। जैसे कोई हीरा है, वो चमकता है, तो कोई कहेंगे कि हम चमक तो पर्याय है इसलिए दिखती है, लेकिन हीरा हमको नहीं दिखता है, वो कैसी कल्पना है? बिना हीरा चमक देखी कैसे? ये दीपक है, बत्ती है, उसकी पर्याय तो दिखती है, प्रकाश की पर्याय दिखती है, दिखने में आती है, और हमको दीपक नहीं दिखता है। दीपक की अवस्था दिखती है और दीपक नहीं दिखता है, वो कोई संभव है? कल्पना कर सकते हो ऐसे? वास्तविकता में तो वो बन ही नहीं सकता। तो आप ये बात कैसे करते हो कि ज्ञान की पर्याय समझ में आती है और ज्ञान ज्ञान वस्तु ज्ञान में नहीं आती है, वो बात कैसे कर सकते हो? वाकई आपका वो कल्पना विहार है और कुछ नहीं है। ज्ञान की पर्याय ख्याल में आती है और ज्ञान ज्ञानवान वस्तु ख्याल में नहीं आती है, ये आपका कल्पना विहार है। कितनी भी बुद्धिमानी हो वो कल्पना में जाता है। प्रैक्टिकल साइड से ऐसा बनना असंभव है, बन ही नहीं सकता है कि पर्याय दिखे और पर्यायवान नहीं दिखे, ये बन ही नहीं सकता है। तो उसका ध्यान देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछने वाले अभ्यासी लोग थे। वहां उतने अभ्यासी लोग थे कि शायद सोगानी जी का अभ्यास नहीं होगा उतना अभ्यास उन लोगों ने किया होगा, प्रश्न करने वालों ने, शास्त्र का अभ्यास तो, क्योंकि वहां तो कई सालों तक लोग रहे हैं और गुरुदेव का संपर्क मिला, कई प्रकार के शास्त्र भी वहाँ अवेलेबल है। सब निवृत्ति में तो सब पढ़ते ही है, व्याख्यान तो 2 घंटा मिलता है, ऐसे एक सुबह का एक दोपहर का, बाकी के टाइम में घर में सब स्वाध्याय अपना अपना शास्त्र का करते हैं वहाँ, तो शास्त्र ज्ञान तो काफी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है, तो ये झमेला होता है कि पर्याय दिखती है, वस्तु नहीं दिखती है, क्या करें? पर्याय क्या दिखती है? कल्पना है। पर्याय देखने के भी कल्पना है और कुछ नहीं है उसमें, वो भी एक तर्क अनुमान करके कल्पना करता है, एक पर्याय दिखती है। वास्तव में पर्याय कहाँ दिखी है? पर्याय दिखे तो पर्यायवान दिखे ही दिखे, नहीं दिखे ऐसा बने ही नहीं। इसलिए ध्यान दिलाया है कि जो उघाड़ में तुमको परज्ञान की पर्याय का ख्याल आता है, तो पर्याय बिना द्रव्य कोई अधर कहीं लटकती है, कोई पर्याय को देखी बिना द्रव्य कहीं, किसी भी कोई भी पर्याय को देखी क्या? संभव ही नहीं है। तो आधार वाली वस्तु क्या है ऐसे देख कर, ऐसे विचार कर नहीं लिया है। देखो क्या क्या बताया है कि तुम देखो आधार वाली वस्तु क्या है, ऐसा देखो तो सही, विचार मत करो। विचार करोगे तो अनुमान में चले जाओगे और विचार में वस्तु परोक्ष रह जाएगी जबकि वस्तु मौजूद है। जो वस्तु मौजूद है उसकी मौजूदगी के को नहीं देख करके उस विषय में विचार करने से क्या फायदा? कल्पना में चढ़ोगे। और ऐसे तो बाहर में नहीं करते, बाहर में जो कोई व्यक्ति मिलती है तो उसका विचार नहीं करते, उनको देख लेते, इनके साथ बात करते प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष मिले और नहीं देख करके उसकी कल्पना कर करके कोई बात करता है क्या, विचार करता है क्या? ऐसा तो कोई वास्तविकता में तो ऐसा बनता नहीं। तो जिसमें से ज्ञान पर्याय निरंतर सतत आई रही है, ऐसी कोई वस्तु है तो अंदर से पर्याय आती है। बिना कोई वस्तु अवस्था कैसे हो सकती है? वास्तविकता में आना चाहिए। ऐसे देखकर उस आधार वाली शक्ति में ही थम जाना कि जो सतत जिसमें से ज्ञान का प्रवाह चालू रहता है, तो उसमें कितनी शक्ति है कि जिस कारण से ज्ञान का प्रवाह बंद नहीं होता है। जो ज्ञान जानता है, एक सेकंड भी आप उसको बंद कर सकते हो जानने का कि हमको नहीं जानना है, ऐसा कर दो, उतनी ज्ञान शक्ति अंदर में भरी है, उतनी भरी है कि उसकी अंदर से ज्ञान की अवस्था को आने को कोई बंद भी नहीं कर सकता है, खुद ही बंद नहीं कर सकता है। ऐसे उनकी शक्ति को देख करके, उस शक्ति में अपनापन करके थम बजाना। कैसा अच्छा टोन आया है देखो। वस्तु को देख करके वो आधार वाली शक्ति में ही थम जाना, प्रसर जाना, व्यापक रूप से अपने को अनुभव करो कि मैं इसमें व्यापक रूप हूँ। क्षेत्र भी साथ में ले लो, जितना शरीर है उतना चैतन्य पिंड है, उसमें परिणमन चल रहा है, अनंत शक्ति उसमें भरी है प्रदेश प्रदेश में, और प्रदेश प्रदेश में से ज्ञान का प्रवाह चालू है। जैसे दूध का उफान आता है और वो टोपिया के बाहर निकल जाता है, ऐसे उतना ज्ञान भरा है, उतना ज्ञान भरा है कि प्रदेश प्रदेश में से बाहर निकल करके आता है, उसको रोक नहीं सकते, उतना भरा है। तो शक्ति कितनी है, उसमें थम जाओ, उसमें प्रसर जाओ, या अपना 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 अस्तित्व उसमें महसूस करो। वही सत स्वभाव है, वही हमारा मूल स्वरूप है, वही सत स्वभाव है। तो यहाँ विचार से आगे जा करके प्रयोग की बात किया है, देखने की बात किया है। देखो भीतर में दुख देखो, अगर दिखने में नहीं आता है तो और गौर से देखो, जरूर दिखने में आएगा, अवश्य दिखने में आएगा। स्पष्टीकरण ब्रैकेट में दिया है, त्रिकाली स्वरूप मात्र ख्याल में लेना है ऐसा अभिप्राय नहीं रख करके अंतर में त्रिकाली आधारभूत शक्ति को स्वयं के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सहज स्थिरता होगी, उपयोग थंब जाएगा, थंबाना नहीं पड़ेगा। इतनी शक्ति भरी है कि उस शक्ति के को देखने वाले उपयोग को उपयोग वहां चौंट जाएगा, थंब जाएगा एकदम। ऐसी शक्ति ऐसी भरी है जिसका कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा अक्षय भंडार, अखूट भंडार ज्ञान का, आनंद का, आनंद शक्तियों का भरा है, जिसमें से अवस्था आती रहती है, बंद नहीं हो सकती, बंद कर नहीं सकते, ऐसी एक परिस्थिति बनती है, ऐसी एक परिस्थिति चालू ही है। तो उसको देखने से देखने वाला भी थम जाएगा। ऐसी महा आश्चर्यकारक वस्तु है अंदर में, कोई भिन्न त्रिकाली है उसको देखने का एक कुतूहल वृत्ति हो जाएगा। तो फिर पढ़ाई करेगा, सुनेगा, सब कुछ प्रयास करेगा, लेकिन वो बात समझ में आएगी नहीं। स्वयं के रूप में देखने का है, अपने रूप में देखने का है कि हमारे ज्ञान पर्याय किस आधार से चल रही है, उसमें शक्ति क्या है, स्वभाव क्या है, शक्ति क्या है। देखने का एक तो प्रयास होना चाहिए, दूसरा कुछ उद्देश्य लेकर के देखना है हमें। वो उद्देश्य वो है कि हमको हमारे स्वरूप को किस शक्ति के रूप में हमारा स्वरूप है, किस स्वभाव के रूप में हमारा स्वरूप है, ऐसा उद्देश्य को धारण करके देखना है। एक देखने की पर्टिकुलर खास प्रक्रिया है वो, ऐसे वो देखा जाता है। वरना क्या होगा कि देखने वाला हम और कुछ और चीज को हमको देखना है, वो कभी देखने में नहीं आएगा। अंतर में त्रिकाली आधारभूत शक्ति को स्वयं के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए। देखो बात तो बात उतनी ही है, लेकिन लिखने में और बोलने में कितना अंतर पड़ता है। पढ़ने में उतना ख्याल नहीं आएगा जितने वो चर्चा में ख्याल में आता है कि देखने की बात क्या है। अंतर में देखना है, अपने आप में देखना है, और अपना स्वरूप है ऐसा दृष्टिकोण को पकड़ करके देखना है कि उसमें मेरा स्वरूप और स्वभाव क्या है। ज्ञान समझ में आता है तो ज्ञान समझ में आता है उसमें आप ऐसा एक दृष्टिकोण को साथ में ले लो कि जो ज्ञान समझ में आता है उसमें उसका स्वभाव क्या है, जहां ज्ञान है वहां ज्ञान का स्वभाव है। तो स्वभाव को देखने का दृष्टिकोण हाथ में रख करके उस दृष्टिकोण से देखो तो देखने में अवश्य आएगा। प्रयास करना चाहिए, पहले प्रयास होगा और प्रयास करने से, इस क्षेत्र में प्रयास करने वाला कभी निष्फल नहीं जाता, प्रयास होना चाहिए, जिससे सहज स्थिरता होगी, यानी कि उपयोग थम जाएगा। सहज उपयोग उसमें शक्ति को देखने ही देखते ही देखने वाला उसमें थम जाएगा। ऐसी महान वस्तु है अंदर में। अंतर्मुख होने के प्रयास में दो प्रकार की परिस्थिति जानने में आती है। गुजराती में लिखो, हिंदी में बोलो। अंतर्मुख थवाना प्रयास में बे प्रकार की परिस्थिति जणाय छे, भावरूपी संकल्प विकल्प अथवा सवाल जवाबनी परंपरा। स्वसंवेदननु क्षेत्र आनाथी आगळ छे तेवुं लागे छे, तेमां केवी रीते प्रवेश करवो ए चर्चा चाली। ये संकल्प विकल्प छे के सवाल जवाब छे, ए पण संकल्प विकल्प छे। एटले स्वसंवेदननु जे क्षेत्र छे एमां शुं छे के स्वसंवेदन तो बधाने चालू छे। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का अपने आप का वेदन सबको चालू ही है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है वो बात सही है। मालूम नहीं पड़ता है इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मालूम क्यों नहीं पड़ता है वो बात हम समझ लें और उसको निकाल दें, तो वेदन लाने का नहीं है, वेदन तो है ही। ज्ञान अपने आप को वेद ही रहा है। उतना ही नहीं, ज्ञान में सिवा ज्ञान दूसरे का वेदन करने का गुंजाइश और अवकाश है भी नहीं, नो स्कोप, जगह ही नहीं है। ये वस्तु स्थिति है। परंतु क्या हो रहा है कि जो ज्ञान में अनेक ज्ञेय जानने में आते हैं उसमें जीव को ज्ञान विशेष का आविर्भाव मैंने आसक्तिपना होता है, खिंचाव रहता है। ज्ञेय को जानते हुए ज्ञान ज्ञेय के प्रति खिंचाव वाला रहता है। खिंचाव कहो, आसक्ति कहो, या ज्ञान ज्ञेय का आधार लेता है, इस कारण से अवलंबन लेता है। और उसको शास्त्र परिभाषा में कहेंगे कि ज्ञान विशेष का आविर्भाव हो रहा है। यही कारण से ज्ञान सामान्य जो ज्ञान वेदन है रूप है उसका तिरोभाव हो जाता है। तिरोभाव हो जाता है मतलब मालूम नहीं पड़ता है, होने पर भी मालूम नहीं पड़ता है। एक ज्ञान की पर्याय में दो अंग है, एक पर्याय के दो अंग है, एक ज्ञान का अंतरंग और एक ज्ञान का बाह्य अंग, बहिरंग। बाह्य अंग को बहिरंग कहते हैं, संधि में र हो जाता है बीच में। तो जो बहिरंग ज्ञान है, बाह्य ज्ञान है, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञेय जानने में आते हैं। दोनों में से एक अंग का आविर्भाव होता है, दोनों का आविर्भाव किसी को नहीं हो सकता। ये एक वैज्ञानिक परिस्थिति है, ये ज्ञान पर्याय का साइंस है, विज्ञान है। कि ज्ञान के पर्याय में दो अंग है, इसमें से एक का आविर्भाव चालू हो सकता है, एक का आविर्भाव में दूसरे का तिरोभाव सहज होता है। तो जिसको ज्ञान विशेष का आविर्भाव है और यह ज्ञेय को जानते हुए ज्ञेय के प्रति का खिंचाव और अवलंबन रहता है, उसको ज्ञान वेदन मालूम नहीं पड़ेगा। उसका बहिर्मुखपना कभी छूटेगा नहीं, वो अंतर्मुख हो सकेगा नहीं। और अन्य ज्ञेयों को जानते हुए भी जो उसको गौण करके, जैसे सुना कोई अनसुना कर देते हैं, ऐसा देखा अनदेखा कर लो गौण करके, वो आता है हमको। सुना अनसुना कर लेते कि नहीं कर लेते दूसरे के, हमको जत्ता नहीं है तो सुना अनसुना कर लेंगे, ऐसे देखे भी अनदेखे कर लेते हैं। हम ट्रैफिक में जाते हैं, ड्राइव करते हैं गाड़ी को, बहुत मिलते हैं, कितने भी गाड़ियाँ, कितने भी रिक्शा हो, दूसरे दूसरे कहीं लोग, आपको कोई पूछे कौन कौन मिले थे, अरे भाई बहुत मिले थे, देखा ही नहीं होता तो कहां से कहेंगे कि बहुत मिले थे, देखा तो था इसलिए कहा कि बहुत मिले थे, बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था वो देख लिया, लेकिन आपने वो नहीं देखा कि कौन कौन थे। अगर वो देखने के जाते तो एक्सीडेंट हो जाता। कौन कौन है वो देखने को जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो स्टीयरिंग पर नहीं देखा जाता, सबको गौण करना ही पड़ता है, देखते हैं और गौण कर जाते हैं। आता है कि नहीं आता है? वैसे जो भी नहीं देखो उसको गौण करो, वो कम होगा। कि अंतरंग में ज्ञान सामान्य रूप जो संवेदन है वही हमारा स्वभाव और स्वरूप है, उसको देखने का हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को धारण करके देखोगे तो ज्ञान है, वो अनुभव की दृष्टिकोण से देखने से देखा जाता है। उद्देश्य को दृष्टिकोण कहते हैं अपन। हमारा दृष्टिकोण क्या है कि ज्ञान में अकेले ज्ञान को, मात्र ज्ञान को, वेदन रूप ज्ञान को ही अकेले को हमको देखना है। ऐसा दृष्टिकोण को धारण करके, ऐसा उद्देश्य को धारण करके अगर देखते हैं तो अन्य ज्ञेय दिखने पर भी गौण हो जाएंगे और ज्ञान अपने आप अपना वेदन कर रहा है वो मालूम पड़ जाएगा, और वो मालूम पड़ते ही त्रिकाली सत में अंतर्मुख हो जाओगे, तो सत का पता चल जाएगा, वही सत है, वहां ही सत है और वही सत है। जो ज्ञानानुभूति वही आत्मानुभूति है। समय सार का 13वां कलश ये बोलता है कि आत्मानुभूति क्या चीज है, कि ज्ञानानुभूति वही आत्मानुभूति है। वास्तव में किल, किल शब्द मान लिया है, किलेति बुद्ध्वा, ऐसा खरेखर जान करके आप अपना अवलोकन करोगे तो आत्मा आत्मा में प्रवेश करेगा। आत्मा आत्मनि निवेश्य, ऐसा लिया है, आत्मनिवेश्य कहो या प्रवेश्य कहो एक ही बात है, आत्मा आत्मा में प्रवेश कर जाएगा, और वही अंतर्मुख होने की एक ही विधि है। और वही बात कर रहे हैं यहाँ 125 में, वही बात करते हैं 125 में कि देखो अंदर में ज्ञान की पर्याय किस आधार पर खड़ी है, पता चल जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ये तो बात सुनने को मिली, लेकिन इस विषय का प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस करने को जाओगे तो और जगह से उठ जाओगे। फिर कहीं ध्यान रहेगा नहीं, न खाने में ध्यान रहेगा, क्योंकि वो सब ज्ञान विशेष का विषय है, किसी के पर ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान नहीं जाएगा तो बेध्यान हो जाओगे। और जगह से दूसरे दूसरे विषय में बेध्यान हो जाओगे, और एक दफे ये होना जरूरी भी है, बेध्यान हो जाओ। कोई कभी बात करोगे तो सुनना नहीं होगा, बेध्यान में नहीं सुना जाता है ना, तो कहेंगे भी आपको बात की थी लेकिन आप, आपका ध्यान नहीं था, हमको मालूम हो गया कि आपका ध्यान नहीं है। तो हमारे गुजराती में इन्हें ध्यान बेरा के वैसे एक टाइटल भी मिल जाएगा कि आदमी ध्यान बेरा है, ध्यान देता है तो सुनता है, ध्यान नहीं देता है तो किसकी सुनता नहीं है। बेरा मैंने बधिर, ठीक, एक सर्टिफिकेट मिल गया तो इसमें क्या नुकसान हो गया? कोई नुकसान है क्या? अनेक प्रकार का विषय तो चला है इस चर्चा के दौरान। अब 129 में थोड़ी निमित्त के विषय में विशेष रूप से बात किया है। देव गुरु आदि निमित्तों का सांसारिक विषयों की अपेक्षा से फर्क है। जितने भी अन्य पदार्थ हैं जिसके साथ हमारे परिणाम लगते हैं, वो सब पदार्थ को निमित्त कहने में आता है। हमारे परिणाम है वो उपादान के स्थान में है, और जिस पदार्थ के प्रति परिणाम लगता है उसको परिणाम का निमित्त बोला जाता है। फिर भी निमित्त निमित्त में फर्क है, ये चर्चा चली है कि देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष आदि जो भी निमित्त हैं, उस निमित्तों का और सांसारिक विषयों की विषयों जो निमित्त हैं हमारे परिणाम में, उसके दोनों में अपेक्षा में बहुत फर्क है। क्योंकि सांसारिक विषय तो अपनी ओर झुकने को कहते हैं, सांसारिक विषय हमारे परिणाम के निमित्त बनते हैं, तो हमारा परिणाम उधर झुक जाता है। मानो वो विषय कहते हैं कि तुम हमारी ओर झुको। जैसे मनोज्ञ विषय होते हैं, मनोहर विषय होते हैं, तो विषय खुद कहते हैं जीव को कि तुम हमारी ओर झुक जाओ। जबकि देवादिक निमित्त अपने ओर के झुकाव का निषेध करके आत्मा की ओर झुक जाओ ऐसा कहते हैं। देवगुरु शास्त्र और सत्पुरुष का उपदेश तो ऐसा है कि हमको कोई अपेक्षा नहीं है, तुम हमारी ओर झुको, तुम अपने में अंतर्मुख हो जाओ, ऐसा कहेंगे। वो तो ज्ञानी ऐसा कहेंगे कि तुम अंतर्मुख हो जाओ। कोई ऐसा कहेंगे कि तुम हमारे पास आया करो, वो ज्ञानी नहीं है। क्यों नहीं आते हैं आप हमारे पास? ज्ञानी तो ये कहेंगे कि तुम अपने आप में स्थिर हो जाओ। दुकानदारी करने वाला अवश्य कहेगा कि हमारी दुकान पर आ जाओ, दूसरी दुकान मत जाना, तुम हमारी दुकान पर आता रहना, ये जहां दुकानदारी है समझ लेना। और ज्ञानी निष्प्रभ होते हैं, सहज अपना आत्म कल्याण करते करते कोई बातचीत से दूसरे का हो जाए तो ठीक है, इससे ज्यादा हमको कोई लेना देना नहीं है। तो निष्प्र रूप से जो कोई बात करेगा, निकल गई सो निकल गई, हो गई सो हो गई, लेने वाला पात्र हो तो ले लेगा, नहीं पात्र हो तो नहीं लेंगे लेगा। लेने वाले से भी हमें क्या, नहीं लेने वाले हम से भी हमें क्या, तो उनको तो कोई लेना देना नहीं है। वो तो कहेंगे कि अपने आप में अंतर्मुख होकर के अपने सुख शांति का अनुभव करो, वही तुमको करने लायक है, वही दुख से छूटने का एक ही उपाय है, और ऐसे ही तुम सुखी हो जाओ। तो वो निमित्त है, वो अपनी ओर झुकने का नहीं कहेगा। क्या लिखा है? देवादिक निमित्त अपनी ओर के झुकाव का निषेध करके स्व आत्मा की ओर झुक जाओ ऐसा कहते हैं। इसलिए देवादिक निमित्तों में फर्क कहने में आता है। संसार के निमित्त और देवगुरु शास्त्र सत्पुरुष चार स्थान है, उनमें फर्क है, उल्टा सुल्टा फर्क है। लेकिन जो जीव अपनी ओर नहीं झुकता और देवादिक की ओर ही झुके रहता है, धर्म के क्षेत्र में क्या करता है कि अंतर्मुख तो होता नहीं और देवगुरु शास्त्र के पीछे लग जाता है। भक्ति पूजा तो भक्ति पूजा, जो करना है उसने तो सांसारिक विषय की तरह ही इन्हें भी विषय बना लिया। जैसे सांसारिक विषय के प्रति परिणाम लगे रहते हैं, ऐसे इन निमित्तों के भी प्रति परिणाम लगे रहे, तो बात तो वो कि वो हो गई, अंतर्मुख होने का रह गया। इस कारण से तो कोई फर्क रहा नहीं, वो भी विषय बनाया, ये भी विषय और वो भी विषय, दोनों को एक सा विषय बना लिया। कहने का अभिप्राय क्या है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष मिले तो भी उनकी जो आज्ञा है अंतर्मुख होने की, वो अंगीकार करो। इसके पीछे परिणाम लगे रहे तो पहले अशुभ विषय के प्रति परिणाम लगे रहते थे, पंचेंद्रिय के विषय तो परिणाम लगने में अशुभ भाव को उत्पन्न करता है, अब शुभ परिणाम होते रहते हैं, लेकिन परिणाम तो बहिर्मुख ही रहे ना, अंतर्मुख तो हुए नहीं। और अंतर्मुख परिणाम हुए बिना किसी को सुख शांति मिलती है ऐसा तो कभी बनेगा नहीं। और वो देवगुरु शास्त्र सत्पुरुष का उपदेश तो अंतर्मुख होने का है। इनके प्रति परिणाम लगाने के पीछे हेतु क्या है? जो स्वसन्मुख नहीं हुए तो इनके प्रति परिणाम लगाने का और हेतु क्या है तुम्हारा? वो कहते हैं वो तो करना नहीं, और आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी तो स्तुति करेंगे, आपके तो गुणगान गाएंगे। वो बात देवगुरु शास्त्र मना करते हैं, निषेध करते हैं उसकी। वो कहते हैं हमारी स्तुति प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं है, हमें हम जैसे हैं वैसे हैं, तुम्हारी स्तुति से कोई हमको लाभ हो जाएगी, हम कोई आगे बढ़ जाएगा, हमको कुछ मिल जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। उसकी अपेक्षा, बिना अपेक्षा हम जैसे हैं वैसे ही है। कोई स्तुति करो कोई निंदा करो, हम दोनों से निरपेक्ष हैं। इसलिए अगर हमारा संग करना है तो हम कहें वैसा कर लो, उसमें तुम्हारी भलाई है, उसमें सुख शांति मिलेगी। उस तरह का इसमें से सारांश निकलता है। यहाँ तक।